તારીખ 4-8-1998 ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 142
ચાર પ્રકારના પ્રતિબંધ છે સંસાર પરિભ્રમણના મુખ્ય કારણોમાં પ્રતિબંધ પણ કારણો છે કૃપાળ દેવના વચનોમાં તો સ્પષ્ટ એક વચન નંબર છે કે સંસાર પરિભ્રમણના મુખ્ય બે કારણો છે એક સ્વચ્છંદ અને બીજો પ્રતિબંધ સમાજ પ્રતિબંધ કુટુંબ પ્રતિબંધ શરીર પ્રતિબંધ અને સંકલ્પ વિકલ્પ પ્રતિબંધ એ ચાર પ્રકારના પ્રતિબંધ એમણે વર્ણવ્યા છે સમાજ પ્રતિબંધ એ લોકસંજ્ઞાનો એક પરિણામ છે તીવ્ર પરલક્ષ હોવાથી એ પ્રકારના જીવના પરિણામ રહે છે કે બીજાની નજરમાં મારો દેખાવ સારો રહે તો સારો બીજાની નજરમાં હું સારો દેખાઉં અને હું ખરાબ ન દેખાઉં એવું લક્ષ રહ્યા કરવું એ લક્ષને કારણે પ્રવૃત્તિમાં એવી સાવધાની રહ્યા કરવી એ તીવ્ર પરલક્ષ અંતરલક્ષ થવાથી એકદમ વિરુદ્ધ હોવાથી પરસ્પર એકદમ વિરુદ્ધતા હોવાથી જીતના પરલક્ષ હોતા હૈ ઉતના હિ સ્વલક્ષ સે જીવ દૂર જાતા હૈ इसलिए वो लोक संज्ञा के परिणाम को लोगों की नज़र में अच्छा दिखाव होवे ऐसा जो लक्ष्य है ऐसा जो भाव है वो जीव को स्वरूप सन्मुखता से दूर ले जाता है कृपालु देव ने उसको कालकूट विष जहर बोला है तो इसकी भयंकरता समझ करके केवल एक आत्मकल्याण के हेतु से ही हमें कुछ भी धार्मिक साधन करना है तो करना है ऐसा एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए और कभी कोई ऐसा उदय आए कि हमें उस उदय के कारण से लोगों की नज़र में गिरना सा हो जाए तो उस उदय में अपने परिणाम को चेक करना चाहिए कि तुम्हारी लोक संज्ञा देख लो अभी कैसे तुम्हारी लोक संज्ञा है इस तरह से लोक संज्ञा के विरुद्ध जितना भी हो सके उतना प्रयास करना चाहिए दूसरा रहा है कुटुंब प्रतिबंध कुटुंब प्रतिबंध में बचपन से ही कुटुंब वालों के प्रति तो राग व्रत रहता ही है होता ही है वो कोई सिखाने की चीज नहीं होती और धर्म के क्षेत्र में और तत्वज्ञान के क्षेत्र में भी जिसका प्रवेश हो बहुभाग लोगों का ये ख्याल नहीं है कि ये कुटुंब प्रति का राग है वो नरक निगोद का कारण होता है ५३७ पत्र में वो बात उन्होंने कही है ये जो कुटुंब में अपनत्व है ममत्व है वो जीव को नरक निगोद में आकर ले जाएगा दिखता कोई अपराध नहीं दिखता सब होता है उसमें नहीं दिखता जैसे एक जमाने में लोग यज्ञ करने में हिंसा करते थे तो राजा महाराजा सब करते थे सेठ श्रीमंत लोग करते थे तो कोई अपराध नहीं गिना जाता ऐसे भी वेस्टर्न कंट्रीज में जो सामाजिक अव्यवस्था है, सब करते हैं तो चलता है। ऐसे हम भी सब अपने अपने परिवार का महत्व करते हैं, अपनत्व करते हैं, अनुराग करते हैं, तो कोई अपराध नहीं गिना जाता। बहुत सामान्य और हल्की बात अपराध है तो गिनते ही नहीं संसार में, तो ये तो ड्यूटी और फर्ज गिनते हैं। कि माँ बाप को बच्चों का पालन करना चाहिए और संतानों को माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए, और आपस में तो फीलिंग होनी ही चाहिए, अपनत्व और ममत्व की फीलिंग तो होनी ही चाहिए संसार में, तो ये सैद्धांतिक स्वीकार है। ड्यूटी के रूप में, फर्ज के रूप में, कुटुंब धर्म के रूप में भी ये है। जबकि मोक्ष मार्ग में ये नरक निगोद का कारण रूप अपराध गिना है ज्ञानियों ने। आप कहते हैं कि वो बात न्याय से कैसे बैठती है, कैसे मान लेवे, अंधश्रद्धा से हम कैसे माने। देखो, आज कोई भी कत्ल खाना चलाता है वो भी एक मनुष्य होता है ना। क्या वो 200-500 रोटी खाता है क्या है? वो भी 5-7 रोटी खाता होगा। कोई 5-7 रोटी खाने के लिए कत्ल खाना चलाना जरूरी है क्या? लेकिन वो चलाता है, वो अपने परिवार के लिए चलाता है। क्यों चलाता है? और आप भी जो भी करते हो अपने परिवार के लिए करते हो, कम पाप होता है क्या? देखो, आप जो व्यवसाय करते हैं उसमें कम पाप होता है क्या? नहीं। वर्तमान परिस्थिति में हमारे जो बनिया लोग जो हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, सामान्य तीव्र हिंसा का नहीं होवे तो भी 3 इंच गति में तो जाएंगे। मनुष्य होकर मनुष्य हो ऐसी सरलता दिखती नहीं। देवलोक में जाने का भी कोई पुण्य दिखता नहीं, क्योंकि सारे दिन पाप का धंधा। हिंसा तीव्र हो और ऐसे परिणाम हो मांस दारू वगैरह का, तो नरक में जाएगा। बाकी जो है सामान्य तौर से जो व्यवसाय होता है, नौकरी धंधा, कुटुंब परिवार के प्रति पालन प्रतिपालन, सब 3 इंच में जाने वाले हैं। वो कत्ल खाना चलाने वाला नरक में जाएगा। तो क्या उसमें पुण्य है क्या? कोई भी पर पदार्थ के इच्छा, वांछा, आकांक्षा, पर पदार्थ के प्रति लेने का, ग्रहण करने का परिणाम पुण्य है या पाप है, बताइए। पाप है। तो नौकरी किस लिए करते हैं? कि तनख्वाह आएगी और जितने भी इच्छाएं हैं वो उसमें से पूरी करेंगे, तो पुण्य कहाँ का? एक जज साहब थे, गुरुदेव को प्रश्न पूछा, साहब देखो हम तो न्याय करने वाले हैं और विदाउट प्रेजुडाइस, प्रमाणिकता से हम न्याय का तोलन करके न्याय देते हैं, इसमें हम पाप कहाँ करते हैं? हम तो जो लोग अपराध करते हैं और जो निरपराधी दो पक्ष होते हैं उसमें जस्टिफाई करने का हमारा काम है, उसमें हम पाप कहाँ करते हैं? ऐसा प्रश्न निकाला था। गुरुदेव ने बोला कि आप जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठे हैं, आप अपने पैसा भर महीने तनख्वाह मिल जाए इसके लिए वहां बैठे कुर्सी पे, किसके लिए बैठे हैं? दूसरों को न्याय देने के लिए नहीं बैठे हैं, वो सर्विस दे करके सरकार को, गवर्नमेंट को सर्विस दे करके आप पैसे लेते हो, और वो पैसा लेना वो पाप है, पैसा कमाना वही पाप के परिणाम है।
और खाली ऐसे ही वो पैसे बगैर काम करे
तो भी वहाँ पुण्य कहाँ है? क्यों बैठा? आत्मकल्याण करो ना। देखो ये भी एक विचित्र परिस्थिति है कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम संपन्न हैं, हमारे पास तो लाखों करोड़ हैं, कुछ किसी से लेते भी नहीं, देते तो है ही, क्योंकि हमारे पास तो है, आमदनी भी है, देते भी है, सेवा भी करते हैं। देखो इसमें क्या अनुचित है, ये तो हमारी निष्काम सेवा है। विचित्र परिस्थिति है, इसका क्या समाधान है? वो भी प्रश्न तो सब सामने आते हैं। परलोक की इच्छा प्राय होती है, कोई परलोक में नहीं मानने वाले भी सेवा करते हैं, लेकिन मान चढ़े बिना पर्याय बुद्धि में रह सकता नहीं। हम सेवा करते हैं, वो बात कहाँ से जाएगी दिमाग में से, ये बताइए। हम लोगों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, दूसरे लोग तो स्वार्थ से करते होंगे, हम तो निस्वार्थ करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, उसका मान कहाँ से जाएगा? जा ही नहीं सकता, कर्तृत्व तो हो ही जाएगा। पर्याय बुद्धि है तो पर्याय में कोई भी फेरफार किया इसका अहम हुए बिना पर्याय बुद्धि में वो कैसे रोक सकता है? उसके पास कौन सा ज्ञान है, कौन सा साधन है? है ही नहीं। तो ये तो एक वितराग का मार्ग ही ऐसा है सर्वज्ञ जिनेश्वर परमात्मा का कि आप गुण ग्रहण कर सकते हो एकांत से, वन वे ट्रैफिक। संसार में तो कोई इलाज ही नहीं है, एक सद्गुण आप ग्रहण करने को जाओगे, पीछे के दरवाजे से दूसरा दुर्गुण सद्गुण से बड़ा दुर्गुण प्रवेश कर देगा, एंटर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसी एक विचित्र परिस्थिति है, ये तो एक सम्यक मार्ग है, इसलिए ये बात संभव है, बाकी तो कहीं जगह ही नहीं, अवकाश ही नहीं है, सद्गुण प्राप्त करने का कोई अवकाश ही नहीं है। जगत में आदर्शवादी लोग बहुत हुए, जैसे अपने देश में गांधी जी एक आदर्शवादी आदमी माना गया है, वो कितने पैमाने में थे दूसरी बात है, क्योंकि लौकिक बात थे। हमारे एक मुमुक्षु मिले थे उसको धनबाद में, अभी नहीं है, गुजर गए, वो बुजुर्ग थे, हमको मिले तो गुजर गए थे। वो धनबाद में थे, गांधी जी कोई आए कुछ अपने टूर के हिसाब से धनबाद में, तो उन्होंने पर्सनल मीटिंग का रिक्वेस्ट किया, तो विठल भाई पटेल इनके सेक्रेटरी थे उस वक्त, वल्लभ भाई के बड़े भाई विठल भाई पटेल थे, तो उनके सेक्रेटरी थे उन दिनों में। तो बोले कि नहीं, टाइम नहीं है महात्मा जी को, किसी को मिलने का टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, ऐसा है वैसा। तो कह नहीं, हमको तो 10-15 मिनट चाहिए ही चाहिए, हमको बहुत काम है, जरूरी काम है। वो हट करके भी मिले, गांधी जी को प्रश्न पूछा, क्योंकि इसके स्वागत में बहुत से पत्ते फूल फल वे सब कमान वमान सब शहर में सब वो किए थे, मान सम्मान तो बहुत देते हैं लोग नेताजी को, और मान देते हैं तो मान चढ़ता नहीं है, वो कौन जानता है। तो वो तो एक दोस्त होता ही है, लेकिन वो जैन थे, अपने तो जरा हिंसा हिंसा के विषय में बोले। देखिए आप अहिंसावादी है ऐसी बात प्रसिद्ध है, हाँ तो है, उनको तो अहिंसा बहुत पसंद है। तो फिर आप वनस्पति में जीव है वो आज का साइंस बोलता है, आपकी मान्यता में क्या? मैं भी मानता हूँ, तो बात प्रसिद्ध है, खुली है, मैं भी मान। देखो आपके स्वागत में कितनी हिंसा हुई है, हुई कि नहीं हुई? देखो तो हुई है, आपने देखा होगा हुई है, तो फिर आपने मना ही क्यों नहीं किया, ऐसा हिंसा नहीं करो? गांधी जी गर्म हो गया, बोले कि मेरे पे गर्म हो गया, इसमें क्या है? भगवान मारा भले इतना ओछा दोकड़ा मुके के तुम जवाब दे दीजिए, बात गुजरती मैं चलती थी। क्या इसका मतलब होता है कि भगवान की नजर में मेरा परसेंटेज कम हो जाएगा ना, कि इतना लायक नहीं है, ठीक है मंजूर है मुझे। मतलब मान सम्मान उतना प्रिय था कि हिंसा होवे तो ईश्वर के, ईश्वर का हिसाब किताब करने वाले थे, तो ईश्वर का हिसाब किताब में मेरा माइनस पॉइंट लिखा जाएगा ना, ठीक है भले ही लिख दे, लिखने दो इसको, बोल दिया
महात्मा जी ने, बोल दिया।
हाँ तो वो तो क्या है, परीक्षा करने वाले तो जाते हैं। हाँ का सूत्र था हिंसा परमो धर्म, और हिंसा इतनी हुई उसको किस तरह से किस अभिप्राय से गिनते थे, एक प्रसंग बना था मालूम। तो ये बात होती है कि जीव को या तो समाज के कारण से, समाज को कुटुंब गिनते हैं, या अपने कुटुंब के कारण से ये प्रतिबंध रहता है, बहुत वजन जाता है। इसलिए देव गुरु शास्त्र धर्मायतन जो है इनके प्रति उसका अनुराग कम रहता है, और वो मोक्ष मार्ग के लायक नहीं रहता। मोक्ष मार्ग के लायक क्या है, वो तो पहचान भी नहीं कर सकेगा, प्रथम संकित में भी नहीं आएगा, तीसरा संकित की बात तो बहुत दूर है, वो 416 में लिया है आरंभ परिग्रह और कुटुंब के प्रति अधिक राग देव गुरु शास्त्र के सिवा, वो पहचान में बाधक कारण है, तीन कारण में एक कारण लिया है, तो ये बात बनेगी। और धर्म भी करना है तो परिवार वाले नाराज नहीं होवे उस तरीके से, उस स्टाइल से उतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। ज्यादा करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो कुटुंब को राजी रख करके हमको धर्म करना है, उसको भी कभी धर्म होने वाला है ही नहीं। और ये कुटुंब प्रतिबंध के परिणाम जो है, कुटुंब प्रति अधिकता वाले परिणाम, वो आखिर में तो नरक निगुद में ले ही जाएंगे। तो इसकी भयंकरता को ख्याल करना, जब जब भी हमको हमारे परिवार के प्रति राग के परिणाम होवे, उसमें उसकी भयंकरता, जैसे कोई काला नाग देखते हैं तो कितना डरते हैं, ऐसा मैं कोई बड़ा अपराध कर रहा हूं ऐसा भय हो जाए, तब तो वो ढीले पड़ेंगे। फिर ज्ञान दशा में वो पर द्रव्य पर भाव है ही है, उसमें आ जाएंगे, ढीले पड़ेंगे, तो ढीले नहीं पड़ेंगे तो उसका परपणा और स्वमय स्वपणा, अपने में स्वपणा आएगा ही नहीं। और शरीर प्रतिबंध, शरीर का ममत्व जीव को उतना होता है कि शरीर को ठीक रखे, तंदुरुस्त रखे, अच्छा रखे, दिखाव तो लोक संज्ञा में जाता है। वो शरीर और शरीर के प्रति अनुराग रहेगा तो शरीर के अनुकूलता वाले जो भी सचेत अचेत पदार्थ है उसके प्रति भी अनुराग हुए बिना रहेगा नहीं। जो अनुकूलता देने वाले होंगे उसके प्रति राग हो ही जाएगा, वो भी एक जीव को स्वरूप में आने के लिए प्रतिबंधक कारण है। और संकल्प विकल्प प्रतिबंध तो वो है कि मिथ्या अभिप्राय के लिए अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं और जीव इसमें अटक जाता है, गूंचवाई जाए। ये संकल्प विकल्प प्रतिबंध है, वो भी सही समझ से दूर करना चाहिए, अभिप्राय सही अभिप्राय बना करके। ऐसे प्रतिबंधों का नुकसान समझ करके उसको शिथिल कर देना चाहिए, तभी परमार्थ मार्ग में आत्म कल्याण के मार्ग में जीव आगे बढ़ सकता है। प्रतिबंध रख करके कोई न आगे बढ़ा है न कोई आगे बढ़ेगा भी। अब क्या है कि मेरे शरीर की अनुकूलता नहीं है तो मैं सत्संग नहीं कर सकता, मेरे को आज ठंड बहुत है तो सर्दी लग जाती है, आज मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मेरे को नहीं जाना है आज, आज बारिश बहुत हो रही है इससे मेरे को ये वातावरण मेरे शरीर को अनुकूल नहीं पड़ता है, कोई गर्मी का किसी को अनुकूल नहीं। सब सबके अलग अलग शरीर प्रकृति होती है, तो शरीर की अनुकूलता हो तो हमको आत्म कल्याण की प्रवृत्ति करना है, वरना नहीं करना है। ऐसा जो एक शरीर की मुख्यता में आत्म कल्याण को गौण करना, उसको कहते हैं शरीर प्रतिबंध। शरीर तो आप कैसे भी रखो, शरीर को आप कैसे भी रखो, वो तो जो असत्ता का उदय आएगा तो रोग होने वाला ही है और आयुष पूरा होगा तो छूटने वाला ही है। तंदुरुस्त से तंदुरुस्त शरीर की अवस्था में प्राण छूटते हैं, बनता है कि नहीं बनता। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रोग आवे तो ही शरीर छूटे। लड्डू खाते खाते लोग मर जाते हैं, उबासी लेते लेते मर जाते हैं, उबासी ले मर जाते हैं। आयुष पूरा होता है तो कोई हालत में, किसी भी हालत में मर जाते हैं। इसलिए अपना काम शीघ्रता से कर लेने का अपना अभिप्राय होना चाहिए और उस अभिप्राय को मुख्य करके हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। बस ये हुआ प्रतिबंध के विषय में। प्रकृति दोष, प्रकृति का चार प्रकार है मुख्य, क्रोध मान माया लोभ। और इसकी प्रकृति की जो गति है उसका भी चार भेद है। गति मैंने तीव्रता मंदता, उसमें अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान वर्णी, अप्रत्याख्यान वर्णी और स्वंजलन, चार भेद हैं। मुमुक्षु की भूमिका में तो चारों होते हैं, लेकिन अनंतानुबंधी ढीली कर सकते हैं और चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी का नाश होता है। पंचम गुण स्थान में प्रत्याख्यान वर्णी का नाश होता है, छठे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान वर्णी का नाश होता है और सातवें गुण स्थान से स्वंजलन कषाय मंद होकर के फिर बारहवें गुण स्थान तक उसका एक एक प्रकृति का कुछ न कुछ प्रकृति का विच्छेद होता रहता है ऊपर ऊपर के गुण स्थान में, और बारहवें गुण स्थान में सब साफ हो जाती है प्रकृति। तो ये जो क्रोध मान माया लोभ है उसके जो चीकने परिणाम हैं वो प्रकृति दोष है, तीव्र रस वाले परिणाम, चिकास वाले परिणाम, वो चिकास को तोड़ देनी चाहिए। कहीं भी हमारे परिणाम ज्यादा नहीं खींचे, चार में से किसी भी प्रकार के परिणाम ज्यादा नहीं खींचे, इसकी सावधानी हमें होनी चाहिए। ये प्रकृति दोष से दर्शन मोह मुमुक्षु को साथ में होने से चारित्र मोह के दौरान भी दर्शन मोह तीव्र हो जाता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं लेना कि तो चारित्र का दोष है, हल्का सा नहीं लेना है, क्योंकि दर्शन मोह साथ में है तो उसको बूस्टिंग मिल जाएगा दर्शन मोह को। परिणाम तो होंगे चारित्र मोह के, पर तीव्र रस से होने का एक कनेक्शन है, इसका रस के साथ इसका कनेक्शन है, निरसता के साथ दर्शन मोह का कनेक्शन नहीं है, रस के साथ इसका संबंध है। तो तीव्र रस वाले चारित्र मोह के परिणाम है वो दर्शन मोह को और बढ़ाता है। इसलिए प्रकृति के विषय में भी हमारा रस तीव्र नहीं हुए उसकी सावधानी होना जरूरी है। प्रकृति में कषाय रस तीव्र होने से अकषाय स्वभाव के विरुद्ध परिणाम की गति और स्थिति हो गई, ये अपने को ध्यान में लेना है। और मुमुक्षु की भूमिका में ये रस तोड़ने का प्रयोग अवलोकन के स्टेज में विशेष प्रकार से होता है। पूर्णता के लक्ष्य होने के बाद जब मुमुक्षु निष्पक्ष रूप से अपना दोष देखने की प्रैक्टिस चालू कर देता है और अवलोकन उसका बढ़ता जाता है और अवलोकन में परफेक्शन आ जाता है, रस टूटता जाता है। प्रकृति का रस तोड़ने का ये एक अमोघ उपाय है, रामबाण उपाय है इस स्टेज में। तो वो प्रैक्टिस उस भूमिका में होती है और रस टूट सकता है। संसार में तो ऐसी कहावत हो गई है हमारे यहाँ, तो प्राण ने प्रकृति साथे जाए, कैसे प्राण ने प्रकृति, मैंने प्रकृति को कोई छोड़ ही नहीं सकते, प्रकृति छूट जाएगी, मतलब मुर्दे को तो कोई होता ही नहीं, ते क्रोधमान माया लो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन परमार्थ मार्ग में ऐसा नहीं है। परमार्थ मार्ग में कितनी भी तीव्र में तीव्र प्रकृति वाले का नाश हो सकता है, प्रकृति को छोड़ सकते हैं। ये ज्ञान कोई ऐसा शस्त्र है वो प्रकृति तोड़ सकता है। हाँ वो तो है ही, वो तो कहेंगे एक और अधिक झुकाव होने से दूसरे के दूसरे और झुकाव बंद हो ही जाता है, ये तो सुगम साधन है। लेकिन अत्यंत भक्ति पहचान से आती है या निष्कामता से आती है, ओग संज्ञा में निष्कामता से आती है और पहचान के बाद तो अत्यंत भक्ति होती ही है। और वो भक्ति से अनेक प्रकार के दोष पैदा ही नहीं होते, उत्पन्न ही नहीं होते, ये एक बढ़िया साधन है अवश्य।
अज्ञानी को चार प्रकृति में क्रोध प्रकृति जोर करती है,
क्रोध है वो अग्नि जैसा है, कैसा है तो अग्नि में भी दो प्रकार है, एक घास की अग्नि होती है भड़का तो बड़ा दिखता है इसका, ज्वाला तो बड़ी दिखती है, लेकिन शांत होने में देर नहीं लगती, सेकंडों में शांत हो जाती। और एक खैर का लकड़ा बोलते हैं हमारे, एक लकड़ा की जाति आती है, उसको धाओ, ज्वाला नहीं दिखेगी जैसे, लेकिन इसका ताप घंटों तक नहीं जाता, 5-5, 6-6, 8-8 घंटा चलता है वो लकड़ी की अग्नि। ऐसे क्रोध भी दो प्रकार का है, किसी को दिखता है ज्यादा, लेकिन शांत होने में देर नहीं लगती, क्योंकि चिकास नहीं होता, चिकास नहीं होती है तो शांत हो जाता है। किसी का क्रोध दिखता नहीं है, मार कुछ नहीं बोले, मन में बहुत क्रोध होता रहे, होता है कि नहीं होता है, घंटों तक, दिनों तक, महीनाओं तक, सालों तक चलता है। हाँ बोल देता है, लेकिन बोले नहीं बोले सवाल नहीं है, अपने तो भाव को समझना है। अगर तीव्र चिकास वाले, रस वाले परिणाम होते तो मिटेंगे नहीं जल्दी, तो उसकी जो तीव्रता है वो रस फैक्टर से समझना चाहिए, ऐसे नहीं समझना चाहिए ज्ञानी है क्रोध कैसे कर दिया, ऐसा नहीं चलता। इसका क्रोध में चिकास नहीं होती, और उस वक्त भी भिन्नत्व रहता है। ये पुरुषार्थ को तो लोग देखते नहीं, पुरुषार्थ को देखे तो मस्तक झुक जाए, क्रोध को देखते हैं क्योंकि उसका परिचय है, क्रोध को देखने का समझने का परिचय है, और अंतर पुरुषार्थ को तो समझने का परिचय है ही नहीं, तो कहाँ से समझेगा, ये बात है। वहाँ किसी भी परिणाम में, कोई भी विभाव परिणाम में ज्ञानी को कर्तृत्व नहीं होता, वही इसके चिकास होने नहीं देता। एकत्व होवे तब तो चिकास होवे, इतने रुखे परिणाम है कि एकत्व ही नहीं होता, इतने रुखे हुए तब स्वामित्व नहीं, एकत्व नहीं। और इस विभाव के, प्रकृति के परिणाम से भिन्न अस्तित्व को अनुभव करते हैं, उसमें अपना अस्तित्व का अनुभव नहीं करते। निर्जरा अधिकार में बहुत लिया, कई शब्द लिए हैं राजमल जी ने, अस्तित्व ही अपना वहां से हटा लिया है। पहले जो रागादि होते थे उसमें अपना अस्तित्व को अनुभव करते थे, वो अस्तित्व को हटा लिया, बस खत्म हो गई बात, ऐसी बात हो
गई। शांत मूर्ति बोलते गुरुदेव श्री के लिए शांत मूर्ति नहीं बोलते, वो प्रकृति के हिसाब से।
फिर भी वो शांत मूर्ति गुरुदेव की भक्ति करती थी उसका हिसाब किताब क्यों नहीं है आपके पास? पेंसिल को प्रशम मूर्ति कहते थे, प्रशम को शांत को एक ही बात है, शब्द प्रशम का प्रयोग कर प्रशम मूर्ति पूज्य बहन, वो हो सकता है। लोग तो बाह्य सद्गुणों को समझते हैं, अंतर सद्गुणों को नहीं समझते। वो बेंसरी क्या बोलती थी कि हमारी शांति की, प्रसन्नता की एक एक पर्याय में ये गुरु का उपकार है, पर्याय पर्याय न उपकार में अनुभव करिए। तो उनकी नम्रता और थी, गुरु के आगे अपनी नम्रता बहुत थी, वो सब बात हमारी समझ में आनी चाहिए। इसमें शांति देते हैं पार्श्वनाथ,
पैसा देते हैं,
हैं? साता बना के रखते
हैं, साता बना के अनुकूलता देते हैं, हैं? शीतलनाथ भगवान शीतलता देते हैं, बाकी कोई तीर्थंकर हिनाधिक है ही नहीं। अगर कोई हिनाधिक गिनते हैं तो एक बहुत बड़ा अपराध है, वो तो ओक संज्ञा में गड़बड़ होती है। और खास करके जो संसार के भक्त है वो सब ऐसे ही होते हैं, जिसको संसार चाहिए वो तीर्थंकर की भक्ति नहीं करते, अपने संसार की भक्ति करते हैं, बस बात खत्म। फिर आगे बात लिया है परलक्ष की। परलक्ष है वो ज्ञान का दोष है। दोष के मुख्य तीन प्रकार है, यानी दोष को तीन विभाजन में विभाजित किए गए हैं। कुछ दोष श्रद्धा के होते हैं, यानी दर्शन मोह के होते हैं। कुछ दोष चारित्र के, मैंने चारित्र मोह के होते हैं। और कुछ दोष ज्ञान के होते हैं। उसमें ये परलक्ष है वो ज्ञान का दोष जाता है, ज्ञान के खाते में है वो। और ज्ञान में होता है इसलिए ज्ञान में उसको अपने को आपको अपने को समझ में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता। चारित्र का दोष ज्ञान पकड़ लेता है, ज्ञान का दोष ज्ञान नहीं पकड़ता, जल्दी से नहीं पकड़ता। नहीं पकड़ सकता वो बात नहीं है, लेकिन जल्दी से नहीं पकड़ सकता, प्राय लोग नहीं पकड़ता। तो परलक्ष से, परलक्ष कब से है कि अनादि से है, कब से है? अनादि से है। हाँ, और स्वपर प्रकाशक शक्ति है, पर को जानने की शक्ति है, और पर को नहीं जाने ऐसा बन ही नहीं सकता, पर को जाने बिना रह ही नहीं सकता। अनादि अनंत एक भी पर्याय ऐसी नहीं होती कि पर को जाने ही नहीं, ऐसी कोई अनिवार्य परिस्थिति है। लेकिन परलक्ष को हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और ये परलक्ष के कारण से पर रुचि बढ़ जाती है, पर रस बढ़ जाता है, और कई प्रकार के दोष पनप जाते हैं।
ज्ञान,
हाँ, लक्ष्य ज्ञान के पर्याय है। वो तो चारित्र प्रधान ज्ञान की डेफिनेशन है, लक्ष्य ज्ञान के पर्याय है। लेकिन उसको जब ध्यान कहते हैं तो चारित्र प्रधान बात गया, क्योंकि ये चारित्र का रूप ज्ञान को होता है। ज्ञान उपयोग स्थिर होता है उसको ध्यान कहते हैं। किसको ध्यान कहते हैं? उपयोग स्थित। उपयोग किसकी पर्याय? ज्ञान के पर्याय। इस तरह से ज्ञान को चारित्र प्रधान भी बता सकते हैं, ज्ञान प्रधान भी बता सकते हैं, और श्रद्धा प्रधान भी बता सकते हैं, सुख प्रधान भी बता सकते हैं, पुरुषार्थ प्रधान भी बता सकते हैं, सब प्रकार से बता सकते हैं। दूसरे दूसरे एक गुण को अनंत गुण का रूप है, तो ध्यान है वो ज्ञान का चारित्र का रूप है, और विश्वास है वो श्रद्धा का रूप है, वो भी ज्ञान का ही पर्याय है। बहुत सी बातें हैं। तो ये जो ज्ञान का दोष है, परलक्ष है, वो अनादि से है। और ये दोष स्वाध्याय सत्संग करने वाले को बहुत परेशान करता है। पूरा पूरा स्वाध्याय सत्संग उसका खा जाता है।
एक बार मुमुक्षु के लिए परलक्ष वो ज्ञान का दोष, और मुमुक्षु से आगे पहुंच गए हैं, उनको परलक्ष में एकत्र बना नहीं है,
उसको परलक्ष नहीं कहते, उसको कहते हैं कि उपयोग अस्थिरता से बाहर जाता है। परलक्ष किसको कहते हैं कि जिसमें स्वलक्ष का सदंतर अभाव हो, समुचा अभाव उसको परलक्ष कहते हैं, कि जिसमें स्वलक्ष हो ही नहीं सकता। तन्मयता होने से क्या होता है कि परलक्ष के कारण से अपना जो प्रयोजनभूत विषय है वो लक्ष्यगत नहीं होता और अप्रयोजनभूत विषय परलक्ष रहा करता है और दूसरों को देख लेता है, दूसरे के दोषों को मुख्य करता है, अपने दोषों को गौण करता है, अपने गुणों को मुख्य करता है, दूसरे के गुणों को गौण करता है, ऐसे कई प्रकार के गड़बड़ वाले परिणाम होते रहते हैं। ये भी आगे नहीं बढ़ने में मोक्ष को बहुत बड़ा अवरोधक कारण है परलक्ष वाला। इसलिए अभी वो चर्चा अपने वहाँ चलती है स्वाध्याय में, तो ऐसे चलती है कि बगल में कौन बैठा है हमको नहीं देखना है, हमको तो हमारा काम में हम बैठे हैं तो सावधान होकर के हमारा काम करना है। बाजू वाला का क्या होता है क्या नहीं होता है कौन नहीं है हमको देखने का। इतना तीव्र स्वलक्ष्य से स्वाध्याय सत्संग करो, ऐसी बात है। तो ये सत्संग और स्वाध्याय का बहुत लंबे काल तक परिचय होने के बाद भी कुछ लाभ नहीं दिखता है, इसका कारण परलक्ष है। और वो परलक्ष बहुभाग समझ में नहीं आता। और शास्त्र में तो यहाँ तक का विधान है कि परलक्ष ज्ञान 11 अंग 9 पूर्व तक का हो जाए तो भी निष्फल जाएगा। अभी तो इसका 1,00,000 भाग भी किसी के पास नहीं है, सहस्त्रांश नहीं, 1,00,000 अंश भी नहीं होता।
हाँ,
ऐसी बात है। स्वलक्ष के अभाव में सब सूक्ष्म बढ़ गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है मोक्ष मार्ग में, इसका कोई वैल्यू नहीं है। और मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, इसका शास्त्रीय अभिनिवेश जिसको बोलते हैं, ये अहम भाव और ये अहंकार हुए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि पर्याय बुद्धि है, सूक्ष्म बढ़ गया, पर्याय बुद्धि में सूक्ष्म बढ़ता है तो उसका अहम भाव हो जाता है, त्याग करने से कसाई मंद करता है तो इसका अहम भाव हो जाता है, और लौकिक नम्रता करते हैं तो उसका अहम भाव बढ़ जाता है, नम्रता का अहम भाव। देखो कैसी विचित्र परिस्थिति है। ऐसे तो वहां थोड़ा विषय गंभीर बनता है कि अरे हमारा सब ज्ञान सब समझ और सब स्वाध्याय सत्संग सब खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, हमको परलक्ष नहीं करना चाहिए। ऐसा परिणामों की चर्चा करते हैं, कोई अपने दोस्त बताते हैं, उसमें भी परलक्ष अगर स्वलक्ष से नहीं समझे तो परलक्ष हो ही जाएगा, तो स्वाध्याय आया स्वाध्याय करने को और नुकसान करके चाहे जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा देखो, ऐसा होता है। हाँ, वामना को भी नुकसान होता है, वो वेदना में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ये भी बनने वाला। इसलिए वो अनेक दोषों का जन्मदाता है परलक्ष है। और आत्मार्थीपने की तीव्रता और स्व लक्ष्य से ही उसको मिटा सकते हैं, दूसरा कोई मिटाने का कोई रास्ता नहीं है इसका। आत्मार्थी मेरे को एक आत्मकल्याण ही करना है, ऐसे आत्मार्थिता तीव्र हो जाए, हमको और कुछ करना ही नहीं है, बस उसको स्वलक्ष्य होता है और ऊपर लक्ष्य मिट सकता है। જે રીતે અનુભવ કર્યો છે એ વાત કરે છે વો ક્યા હે કોઈ તુંબડી હોતી હે ઉસમે કંકર નાખતે હૈ ઓર ઉસમે ફિર હિલાતે હૈ તો આવાજ આતા હૈ ને ઇસકા મીનિંગ ક્યા હોતા હૈ કુછ અર્થ નિકલતા હૈ તો એસે કોઈ બોલતે હૈ કે નમો અરિયંતાણમ ઓર અર્થ તો ઉસકા ભાવ તો સમજે નહીં અરિયંત કે સ્વરૂપ કો સમજે નહીં તો બોલા ક્યા કે તુંબડી મેં કાંકરા આવાજ આઈ तुमड़ी में काकरा का आवाज आई ऐसे आवाज आई नमोरियम तण वही बात हो गई ऐसा निरर्थक।